ओम शांति। अव्यक्त वाणी 26 मई 1969। संपूर्ण स्नेही की परख। चौथा पॉइंट है, स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उस कह सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उनके नयनों से वही नूर देखने में आता है, उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते, उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा। बाबा कहते हैं, स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? बच्चे, इस गुण को बहुत समझदारी से समझे। यह जो स्नेह का गुण है, यह सबसे बड़ा गुण है। अगर आपके अंदर स्नेह का गुण नहीं है तो आप जीवन नहीं जी सकते। स्नेह होना चाहिए। इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका किसी से स्नेह ना हो। फिर वह स्नेह लौकिक परिवार के रूप में किसी से हो या आपके लौकिक एम ऑब्जेक्ट से हो या आपके अलौकिक एम ऑब्जेक्ट से हो, लेकिन आपका स्नेह किसी न किसी से जरूर होता है। अभी उसकी परख क्या है? जिससे स्नेह है आप उसके हिसाब से चलेंगे। किसी का अपने लौकिक एम ऑब्जेक्ट से स्नेह है तो उसका हर कर्म उस प्रकार से होगा। किसी को बड़ा अफसर बनना है तो उसका ध्यान पूरा उसी में होगा, माना उसका वह स्नेह है। समझ की बात है बच्चों के लिए। किसी का लौकिक में खान पान से स्नेह होता है, वस्त्र अलंकार से स्नेह होता है, उसका कर्म उसी दिशा में जाएगा, उसके बोल, उसके विचार, दृष्टि और वृत्ति भी उसी दिशा में जाएगी। यह स्नेह की परख है। जिससे स्नेह होता है हम उसके हिसाब से चलते हैं। यहां भी बाबा पूछ रहे हैं कि अगर बाप का आपसे स्नेह है और बाप के अंदर वो गुण आपको दिख रहे हैं कि बाप बच्चों के हिसाब से चल रहा है, तो आप बच्चों का भी बाप से उतना ही स्नेह होना चाहिए और आप बच्चों को भी बाप के श्रीमत अनुसार चलना चाहिए। जब आप बच्चे बाप की श्रीमत अनुसार चलेंगे तो वह स्नेह का प्रमाण होगा। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, वह स्नेह का प्रमाण है। अभी बाप किसे सिखला रहा है? बाप आत्माओं को सिखला रहा है। आत्मा समझ के बैठेंगे तो ज्ञान आसानी से बुद्धि में उतर जाएगा। शरीर समझ के बैठेंगे, नाम रूप से बैठेंगे तो ज्ञान उतरेगा नहीं, मुश्किल होगी। बच्चों के लिए यह भी एक समझ की बात है कि किसके सामने बैठे हैं और क्या समझ कर बैठे हैं। बस स्वरूप में बैठ जाओ, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी, तो क्या आप नहीं सीख सकते? बस स्वरूप में आओ। आप स्वरूप में नहीं होते, इसलिए आपको सीखने में समय लगता है। अभी अगर आत्मा का ज्ञान है तो आत्मा के स्वरूप में आओ। समझ की बात है बच्चों के लिए। संगम युग का ज्ञान है तो संगम युग पर आ जाओ। सतयुग की कोई बात है तो सतयुग में पहुंचो। बस स्वरूप में आओ। मुक्ति तो सदा है हर किसी के लिए, बस मुक्त अवस्था में रह के देखो, अनादि स्वरूप में रह के देखो। परिस्थिति कुछ भी हो, तुम बस अनादि स्वरूप में रहो, मुक्ति अपने आप अनुभव करोगे। तुम अनादि स्वरूप में नहीं रहते और तुम्हें मुक्ति चाहिए, कैसे अनुभव होगे? अनुभव करना है तो उस स्वरूप में आना पड़ेगा। उस स्वरूप में कब आएंगे? अगर श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर कब चलेंगे? अगर स्नेह होगा बाप से। बहुत से बच्चे हैं बस नाम के बाप से जुड़े हैं, संस्था से जुड़े हैं, नाम के ज्ञान में चल रहे हैं। नाम के क्यों? क्योंकि बाप जो कहता है वो करते नहीं, वो उनके हिसाब से ही चलते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, जब से ब्राह्मण बने हैं तब से बाप की श्रीमत अनुसार हम कितना चले हैं। बाप ने कहा और आपने किया, चेक कीजिए। यही स्नेह की निशानी है, बाप का कहना और बच्चों का करना। लौकिक में भी बाबा कहते हैं जिनका प्यार, जिनका स्नेह एक दूसरे से होता है। जब भी स्नेह की बात आती है तो यह जरूरी नहीं कि वह युगल ही हो। माँ बच्चे का भी स्नेह होता है, भाई बहन का भी स्नेह होता है। समझ की बात है। मित्रता में भी स्नेह होता है। तो जब स्नेह होता है तो स्नेह में हम पूरा सामने वाले के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उससे स्नेह है। फिर वह कांटों के जंगल से लेके जाए या फूलों के गार्डन से लेके जाए, लौकिक बात कर रहे हैं। हम सुध बुध खो देते हैं, बस चलते रहते हैं, वो जहाज से भी लेके जाए। यह स्नेह की निशानी है। समझ है? बाबा कहते हैं अभी सभी बच्चे यह जानते हैं कि बाप बैठा है, बाप सतयुगी दुनिया में लेके जा रहा है। अगर सतयुगी दुनिया में लेके जा रहा है तो फिर श्रीमत को पालन करने में हम पीछे क्यों हो जाते हैं? कभी आगे कभी पीछे, ऐसा क्यों है? समझ की बात है क्या बाप का आप बच्चों से स्नेह कम है? चेक कीजिए। या फिर आपका बाप से स्नेह कम है? दोनों में से एक बात होगी। इसलिए आप बच्चे बाप की श्रीमत अनुसार नहीं चलते। संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? बाबा पूछ रहे हैं कि संपूर्ण स्नेही उसकी परख क्या होगी। वह संपूर्ण सरेंडर करेगा, बलिहार जाएगा, न्योछावर हो जाएगा। यह संपूर्ण स्नेही की परख होगी। इसलिए लौकिक रूप में जब किसी का संपूर्ण स्नेह होता है किसी से, अभी यहां युगल की बात कर रहे, आशिक माशुक की बात कर रहे, तो वो किसी की बात नहीं सुनते, ना अपने माँ बाप की बात सुनते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं। उन्हें जो करना है वही वो करते हैं, क्योंकि स्नेह का नशा होता है। अभी लौकिक बात के लिए हम कहेंगे स्नेह का भूत सवार होता है। बाबा पूछ रहे हैं, यहां तो आत्मा का कल्याण हो रहा है, तो स्नेह की कमी क्यों है? बाबा ऐसे नहीं कहते कि अपने घर बार को छोड़ो, नहीं, वहां रहो। घर गृहस्थ संभालते, बाप को याद करो। बाप की श्रीमत क्या है? बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। अगर कर रहे हैं तो स्नेह है, समझ की बात है। अपने को चेक करो कि आपका बाप से संपूर्ण स्नेह है क्या, चेक करो। उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, बच्चों ने जो सुनाया इस प्रकार उस प्रकार, बाबा कहते वो तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उस कह सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उनके हर बोल में वही दिखेंगे, बाबा कहते हैं उनके सूरत में वही दिखेंगे कि इनके ऊपर फलाने का नशा है, उनकी सूरत में दिखेगा। बाबा वही पूछ रहे हैं, आप सभी अपनी सूरत को चेक करो। कभी महसूस होता है सारे दिन भर में कम से कम एक मिनट के लिए कि आपके ऊपर बाप का नशा है, परमात्मा का नशा है? कभी महसूस होता है? बाबा कहते चलो 24 घंटे को छोड़ो, हम बस एक मिनट की बात पूछ रहे हैं। कम से कम एक मिनट के लिए वह नशा दिखता है आपकी सूरत में परमात्मा का, चेक करो। उनके नयनों से वही नूर देखने में आता है। क्या आपकी नयनों से किसी और को यह नूर देखने में आता है कि आपको कुछ मिला है, आपने कुछ पाया है? अपने को अनुभव करो, अपनी खुद की ही चेकिंग करो। इस ज्ञान से आपकी आंखों में क्या दिखाई देता है, चेक करो। कहीं ऐसे तो नहीं कि आपके आंखों में बस संसार ही दिखाई देता है? जो अंदर होता है वह नयनों में दिखता है। जो अंदर होता है और जो नयनों में दिखता है वही बोल में उतरता है। जो बोल में उतरता है उस अनुसार ही कर्म होते हैं। बहुत से बच्चे हैं जब भी बाप से मिलेंगे आत्मा परमात्मा की बात नहीं करेंगे, संसार की ही बातें करेंगे। बाबा भी सोचते हैं कि किसके साथ बैठे हैं और क्या बात कर रहे हैं। संसार की बातें करने के लिए इन्हें मैं ही मिला था, बाबा भी सोच रहा होगा, और कोई नहीं है। यह भी समझ की बात है बच्चों के लिए कि किसके साथ बैठे हैं और क्या बात करनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, आपकी सूरत में, आपके नैनों में क्या दिखता है चेक कीजिए। कहते तो हैं बच्चे कि हमें बाप मिला है, परमात्मा मिला है, पर वह दिखता नहीं है। कहने से कुछ होगा नहीं कि आपको कुछ मिला है, दिखना भी तो चाहिए। आप कितना भी कहो आप लौकिक रूप में बहुत अमीर हो, लेकिन लौकिक रूप की अमीरी आपसे दिखनी तो चाहिए। आपके पास वैसे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपके कपड़े चाहिए, तब वह अमीरी अपने आप दिखती है। उसी प्रकार रूहानी रूप से आप अमीर हो तो आपके चेहरे से, आपके नैनों से, आपके बोल से दिखना तो चाहिए कि आप रूहानी रूप से अमीर हो। चेक करो अपनी सूरत को, अपने नैनों को, आपकी सूरत में क्या दिखता है। बाबा दिखता है, बाबा ने तो कह दिया है कि अंत समय में मेरे हर बच्चे से मैं दिखूंगा। आप उसके बच्चे होंगे तो बाप दिखेगा, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, जिनसे दिखना होगा दिख जाएगा। अंत में हर बच्चे के बोल से मैं अनुभव हो जाऊंगा हर किसी को। अपने बोल को चेक करो। बाबा कहते हैं चेक करो, अपने नैनों को चेक करो। हर बच्चे की दृष्टि से मैं दृष्टि दूंगा सारी दुनिया को, सारे विश्व को। आपके नैनों में कौन है चेक करो। उनके हर चलन से, बाबा कहते हैं उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते हैं, उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा। बाबा कहते हैं चार बातें, उनकी सूरत में बाप दिखाई देगा। स्नेह की बात हो रही है, जिससे स्नेह होगा वो दिखाई देगा। बाबा यह कहेंगे कि अगर आपको स्नेह है बाप से तो बाप दिखाई देगा। उनकी सूरत में स्नेही की सूरत देखने में आएगी, उनके नैनों से वही नूर देखने में आता है, उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते, उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा। जिससे स्नेह है, सूरत, नयन, बोल और चलन, चारों में स्नेही होगा। जिससे स्नेह है उनकी चाल चलन भी बदल जाती है, उनका खान पान भी बदल जाता है, उनका साज श्रृंगार भी बदल जाता है, वह सब स्नेही के अनुसार होता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को चेक करें, सूरत में बाप की रूहानियत है, दृष्टि में बाप की अलौकिकता है। चेक कीजिए नैनों में फिर मुख में बाप का ज्ञान निकलता है, चेक कीजिए। और कर्म में ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता ही कर्म दिखते हैं जो बाप ने सिखलाए हैं, चेक कीजिए। बाबा कहते हैं अगर होंगे तो आपका मुझसे स्नेह है, आपका साज श्रृंगार भी बाप समान है, चेक कीजिए। लौकिक में भी ऐसे ही होता है, जिससे स्नेह होता है वो कहे कि यह ड्रेस बहुत अच्छा है तो आप वही पहनेंगे। बाबा भी कह रहा है यह गुण शक्तियों का ड्रेस, साज श्रृंगार बहुत अच्छा है, यह विश्व सेवा का साज श्रृंगार बहुत अच्छा है, तो क्या आप वह पहन रहे हो? चेक करो। अगर पहन रहे हो तो इसका मतलब बाप से स्नेह है, नहीं पहन रहे हो माना बाप से स्नेह नहीं है। इसलिए इस आध्यात्मिक राह पर सदगुरु से स्नेह होना बहुत आवश्यक है, तब ही आप श्रीमत पर चलेंगे। अगर स्नेह नहीं होगा तो चलने में दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, मनमत बाहर आएगी ही आएगी हर बात में, अगर स्नेह नहीं है। इसलिए पहले अपने स्नेह को चेक करो, आपका बाप से कितना स्नेह है चेक करो। स्नेह होगा तो आगे बढ़ो, वरना मेहनत करते रहोगे और प्राप्ति कुछ नहीं होगी। इस दुनिया में प्राप्ति भी कहाँ होती है? जिस एम ऑब्जेक्ट से आपको स्नेह है और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, पहले तो उसके लिए जो कुछ करोगे वह मेहनत नहीं लगेगी। फिर भी कह रहे कि उसके लिए जब आप मेहनत कर रहे हो तब ही वहां प्राप्ति होगी। अगर स्नेह नहीं है और आप कोई कर्म करने जा रहे हो, आपके भाग्य में असफलता 100% होगी। अगर बिना स्नेह के कोई कर्म करने जाओगे, स्नेह से माना क्या है? दिल से करना, स्नेह से करना माना दिल से करना। आपके दिल ही नहीं है और आप कोई कार्य करने जा रहे हो, सफलता कैसे प्राप्त होगी? बहुत से बच्चे हैं ऊपर ऊपर से करते हैं, दिल होती नहीं, और फिर कहते हैं कि प्राप्ति नहीं हुई। कहां से प्राप्ति होगी? अंदर से करेंगे तब प्राप्ति होगी, और अंदर से करने के लिए दिल चाहिए, उस बात में स्नेह चाहिए। तो जिस कर्म में आपका स्नेह नहीं है उन कर्मों को मत करो, सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी कर्म करना है तो स्नेह से करो, सफलता निश्चित मिलेगी, प्राप्ति निश्चित होगी। भोजन करने का मन नहीं है और आप भोजन करेंगे, पेट भर जाएगा लेकिन भोजन का अनुभव नहीं होगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। जहां स्नेह है वही बात करो, कल्याण हो जाएगा। स्नेह में सदा कल्याण है। बच्चे अपने को समझें, अपने को देखें, उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा, उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा, उनमें से स्नेही ही दिखाई देगा। स्नेही माना जिससे स्नेह है, ऐसे नहीं कि स्नेह के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। यह प्रिंसिपल हर बात के लिए एप्लीकेबल है। आपके लौकिक एम ऑब्जेक्ट के लिए भी है। अगर आपको स्कूल कॉलेज में नंबर वन आना है तो आपके चाल चलन से दिखता है कि यह बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। यह खेलने के समय में भी खेलने में नहीं आते, जब देखो पढ़ते रहते हैं, शायद इन्हें नंबर वन आना होगा। दिखता है कि आपका पढ़ाई से स्नेह बहुत है। वही बात बाबा कह रहे हैं, बाप से स्नेह होगा तो बाप दिखेगा, बाप की हर शिक्षा आप में दिखेगी। बाप की हर शिक्षा आप में नहीं दिखती तो इससे सिद्ध हो जाता है कि बाप से आपका स्नेह नहीं है। बहुत से बच्चे हैं, कभी कभी बाप सबके सामने कोई बात कहता है और उस बात को भी बच्चे बदल देते हैं, बाप की उस बात को बच्चे बदल देते हैं। बाप एक कहता है, बच्चे दूसरा कहते हैं, सबके सामने भी। बाप कहता है ऐसे मत करो, बच्चे वैसे ही करेंगे। बाप कहता है ऐसे चलना चाहिए, बच्चे उससे विपरीत चलेंगे। अभी इन बच्चों को क्या कहें? यह बच्चे बच्चे कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन बात कर रहा है। वो बस अपनी बात, अपने संस्कार, अपनी इच्छाएं ही आगे रखेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बात से बहुत स्नेह है, अपने संस्कारों से बहुत स्नेह है, अपनी इच्छाओं से बहुत लगन है, बहुत स्नेह है, उसमें ही वो मगन है। ये भूल गए कि किसके सामने बात कर रहे हैं, सामने कौन बात कर रहा है। ऐसे बच्चे हैं, ये प्रमाण है। देखिए, जिसको जिसमें स्नेह होता है ना, वो वही बातें करता है। किसी को संसार में स्नेह है ना, तो वो बाप के पास बैठकर भी संसार की ही बातें करेंगे। किसी को खान पान में स्नेह है ना, तो बाप से मिलने के बाद ही बाप को वही बात सुनाएंगे, बाबा ये भोजन बनाते हैं, वो भोजन बनाते हैं। किसको घूमने फिरने में स्नेह है तो बाप से मिलकर वही बातें करेंगे। किसको दुनियावी एंटरटेनमेंट में स्नेह है तो बाप से मिलकर वो वही बातें करेंगे। ज्ञान की बातें मुश्किल निकलेगी। जब बाप सामने बैठा है, आप सभी एक दूसरे को परखना, जिसके मुख से जो बातें निकल रही है उसको उससे ही स्नेह है। कोई कोई बच्चे चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बाप से स्नेह है, उन्हें संसार से स्नेह है, पर बाप की बातें मुख पर नहीं आ रही है और संसार की ला नहीं सकते, इसलिए वो चुप बैठे हैं। बाप के साथ बैठे और बाप की बातें मुख में आए तो ही कह सकते हैं बाप से स्नेह है। बाप की बातें माना कौन सी? ज्ञान की बातें, आत्मा परमात्मा ड्रामा की बातें। यह अगर आपके मुख से नहीं निकल रही है तो यह सिद्ध हो जाता है कि आपको संसार से स्नेह है। संसार से स्नेह माना बाप से नफरत। समझने की कोशिश कीजिए, स्नेह एक से ही होता है, या तो संसार से या फिर बाप से। आप ये नहीं कह सकते कि हमें संसार से भी स्नेह है और बाप से भी स्नेह है। यह आपकी गलतफहमी है। स्नेह हमेशा एक से ही होता है, संपूर्ण स्नेह। स्नेह अनेकों से नहीं होता, समझ की बात है। वह एम ऑब्जेक्ट से होगा, बाप से होगा, आपके कर्मों से होगा, आपके कार्य से होगा, लेकिन आपका स्नेह एक ही जगह होगा और वही आपकी कोर एनर्जी होगी जहां आपका स्नेह है। जिसका बाप से स्नेह है ना, उसके नैनों में भी बाप दिखाई देगा, शीतलता दिखाई देगी, उनके मुख से बाप ही निकलेगा, आत्मा परमात्मा की ही बातें निकलेगी, ड्रामा की ही बातें निकलेंगी, सतयुग संगम युग की ही बातें निकलेंगी, पांच स्वरूपों की ही बातें निकलेंगी। कोई आए और बाबा को कहे, बाबा इस संसार का क्या करना है, कैसे करना है, समझ जाओ वो संसारी है। संसार की बात आपको बाप के सामने कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह संसार उसी ने बनाया है। सारे दुनिया की संसार की बातें वो जानता है और आपके संसार की भी बातें वो जानता है, पर आप नहीं जानते हो कि आप किसके सामने संसार की बातें कर रहे हो। जिसने संसार बनाया उसके सामने आप संसार की बातें कर रहे हो, शोभा नहीं देगा, क्योंकि वो संसार के कण कण को जानता है। उसके सामने आप वो बातें करो जो आपको पता नहीं है, जो आप जानने के लिए उसके पास आए हो। अब बच्चों को भी वो समझ होनी चाहिए कि कोई संसार की बातें बाप से करे तो उनको चुप कराना चाहिए। कोई भी बात हो संसार की, संसार की बातें माना मिट्टी की बातें, देह से लेकर इस विश्व तक सब मिट्टी है, उसकी बातें जब भी कोई करे उनको चुप कराना चाहिए, उनको बताना चाहिए अब कौन सी बातें किसके सामने कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है, उनको कहो कि सामने कौन बैठा है। सुप्रीम रूह बैठी है तो रूह की बात करो, रूहानी बात करो, आत्मा की बात करो, ड्रामा की बात करो। क्या सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने गए तो संसार की बातें की? उन्होंने मित्रता की बातें की, मना रूह की बातें की, संसार की बातें नहीं की। समझ की बात है बच्चों के लिए। अगर आप में स्नेही समाया हुआ है, मना बाबा से आपका परम स्नेह है, तो आपके चाल चलन से बाबा ही दिखेगा, आपकी हर बात से बाबा दिखेगा। बाबा कहते हैं उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा, ऐसी अवस्था होनी है। जब बच्चों की ऐसी अवस्था होगी कि उनके सूरत में, नयनों में, मुख में और चलन में बाप होगा, तब ही बच्चे विश्व कल्याण कर पाएंगे। सदा के लिए हम कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि चार घड़ी के लिए बाप है फिर दस घड़ी के लिए संसार है, सदा के लिए बाप। ऐसी अवस्था जब होगी तब ही बच्चों से विश्व कल्याण होगा। तब तक बच्चे स्व कल्याण ही करते रहेंगे, वह भी कितना होगा पता नहीं, क्योंकि संसार समाया हुआ है, संसार से स्नेह बहुत है। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को चेक करो, आपका स्नेह कितना है बाप के साथ, बाप की हर बात को आप दिल से कितना मानते हो। मानते तो सभी हैं, लेकिन दिल से कितना मानते हो, स्नेह से कितना उस पर चलते हो, अपनी अवस्था को चेक करो। चेक करेंगे तो पता चलेगा। बाबा कहते हैं रोज कह रहे बाबा, बहुत गई थोड़ी रही, अभी तो मुझसे स्नेह करो। बस हुआ 5000 साल तुमने संसार से स्नेह किया, क्या मिला? आधा सुख आधा दुख। अभी बाबा कहते हैं मैं संगम पर आया हूं और वह संगम भी समाप्त हो रहा है, अभी तो बाप से स्नेह करो, यह भी कहना पड़ रहा है कि बाप से स्नेह करो। स्नेह करना मना बाप की बात को मानना, उस पर चलना। अभी तो संसार छोड़ो, संसार में सब असार है और बाप में ही सारा सार है। तुम सार छोड़ के असार के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें कब वैराग्य आएगा कि तुम परमात्मा के पीछे बुद्धि से भाग जाओगे? बाबा कहते हैं जितना स्नेह तुम्हारा संसार से है ना, उसमें से 1% भी मुझसे हो तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, पर तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा संसार से स्नेह बहुत है और मुझसे बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे बिल्कुल नहीं है, होता तो तुम मेरी बात मानते, दिल से स्नेह से प्यार से, पर तुम्हारा बिल्कुल स्नेह नहीं है। बहुत बच्चे हैं उनका सतयुगी पद पोजीशन से स्नेह है, इसलिए ज्ञान में रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, इसलिए ज्ञान में चल रहे हैं, बाप से स्नेह नहीं है, उन्हें सतयुग चाहिए, वहां की पद पोजीशन चाहिए, इसलिए ज्ञान में चल रहे हैं। आप बच्चे अपने को चेक करो, बहुत गई थोड़ी रही, उस थोड़ी में से भी बहुत थोड़ी रही, इस महावाक्य को ध्यान में रखना। अब इस थोड़ी में ही संसार की माया बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी संसार की माया। आपको बीच बीच में शमशानी वैराग्य बहुत आएगा, नहीं आज से बाबा की हर बात मानेंगे, बाबा जो कहेगा वही करेंगे, अगली घड़ी जैसे थे, क्योंकि यह जो थोड़ी में से भी बहुत थोड़ी बची है ना, उसमें विराट माया जन्म ले चुकी है, क्योंकि अंत का समय है। इस बात को ध्यान में रखना, अभी अंत के समय में संसार की माया विराट रूप में खड़ी है। ऐसे नहीं कि बाप की एक बात मानी दूसरी नहीं मानी, बाप ने 10 बातें कही है उसमें से एक भी नहीं मानी, 9 मानी है लेकिन एक नहीं मानी, फिर भी यह विराट माया आपको खा जाएगी। आपको अंत के समय में 10 की 10 बातें माननी पड़ेगी दिल से, और 10 बातों पर चलना पड़ेगा, तब माया से छूट जाएंगे। 10-20 साल 30 साल 40 साल पहले बात अलग थी, अभी माया विराट है। अभी इस माया ने महामाया का स्वरूप लिया है, ध्यान में रखना। आपको 1.1% भी लगाव होगा ना किसी बात से, वो आपको 100% निगल जाएगी। आपको अभी 100% लगाव बाप से ही लगाना पड़ेगा, तब आप बच पाएंगे, इस संसार से निकल पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है, कुछ भी करो पर इच्छा मात्रम अविद्या बनो। पूरी रीति बस मैं और मेरा बाबा, तब आप बच पाओगे। बस मैं और मेरा बाबा, अभी बचने का और कोई उपाय नहीं है। सदा ध्यान में रहे कि मैं और मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, और मैं और मेरा बाबा इसी बात में, इसी याद में सदा खोए हुए रहना। बस बाप और मैं और कुछ नहीं। संसार के जो कर्म आपसे होने हैं, जिस समय पर होने हैं, हो जाएंगे। आज से संसार को बुद्धि से भूल जाओ, और बुद्धि में 24 घंटा बाप याद रहे। संसार को भूल जाओ, हर बात को भूल जाओ। जो बच्चे ब्राह्मण बन के आए हैं संगम युग में, उन्होंने ज्ञान योग धारणा सेवा को भी संसार बना लिया है। सेवा तो बहुत बड़ा संसार बन गया है सबका, अभी इस सेवा को भी भूल जाओ। बाप को आपसे जब जो सेवा करनी होगी करेगा, बाप को आपको जिस समय में जो ज्ञान देना होगा दे देगा, जिस प्रकार का योग लगाना होगा करना होगा आपसे बाप करेगा, जो धारणाएं बाप को करनी होगी बाप करेगा। आप बस इसमें रहना, मैं और मेरा बाबा। बस आपके लिए एक ही श्रीमत है, आपकी एक ही धारणा है कि मैं और मेरा बाबा, तभी उद्धार होगा स्वयं का और विश्व का। अच्छा, ओ शांति।